समाचार सेवा प्रभाग प्रस्तुत करता है कार्यक्रम आज सवेरे।
नमस्कार, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। एक नए दिन की नई सुबह में आकाशवाणी गोल्ड पर हम आपके साथ जुड़े हैं न्यूज मैगजीन प्रोग्राम आज सवेरे लेकर। मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी और मेरे साथ हैं सुभद्रा रामचंद्रन। नमस्कार सुभद्रा।
गुड मॉर्निंग देवेंद्र, वेरी वार्म वेलकम टू यू एंड ऑल फोक्स ट्यून्ड इन टू अस दिस संडे मॉर्निंग। सो स्टे विद अस फ्रेंड्स, एंजॉय दिस सेशन ऑफ आवर न्यूज मैगजीन शो आज सवेरे। सो देवेंद्र, आर वी रेडी?
यस। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंगलवार को मॉरिशस की दो दिन की यात्रा पर जाएंगे। कल शाम नई दिल्ली में मीडिया से बातचीत में विदेश सचिव विक्रम मिसरी ने कहा कि वर्ष 2015 के बाद प्रधानमंत्री मोदी की मॉरिशस की ये पहली यात्रा होगी। उन्होंने कहा कि मॉरिशस के साथ भारत के संबंध सदियों पुराने हैं और ये साझा इतिहास, संस्कृति, जनसंपर्क के माध्यम से जुड़े हुए हैं। श्री मिसरी ने बताया कि मॉरिशस हिंद महासागर में भारत का एक महत्वपूर्ण भागीदार देश है और निकट समुद्री सहयोगी है। उन्होंने कहा कि 2015 में प्रधानमंत्री ने इस क्षेत्र में सभी के लिए सुरक्षा और विकास कार्यक्रम सागर की परिकल्पना की थी, जिसमें हिंद महासागर क्षेत्र में भारत की महत्वपूर्ण भूमिका है। विदेश सचिव ने यह भी कहा कि मॉरिशस के साथ भारत के मजबूत संबंध हैं और पिछले दशकों में इन संबंधों में काफी मजबूती आई है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री की इस यात्रा से दोनों देशों को भागीदारी की समीक्षा करने और इसे मजबूती प्रदान करने का अवसर मिलेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मॉरिशस के राष्ट्रीय दिवस समारोह में मुख्य अतिथि होंगे। भारतीय सुरक्षा बलों का एक दल, भारतीय नौसेना का एक जहाज और वायुसेना का आकाश गंगा का स्काई डाइविंग दल भी इस कार्यक्रम में शामिल होगा। प्रधानमंत्री मंगलवार की सुबह पोर्ट लुइस पहुंचेंगे और उनका औपचारिक स्वागत होगा। श्री मिश्री ने कहा कि प्रधानमंत्री मॉरिशस के पूर्व प्रधानमंत्री शिव सागर राम गुलाम और पूर्व राष्ट्रपति अनिरुद्ध जगन्नाथ को श्रद्धांजलि देने के लिए शिव सागर और राम गुलाम बॉटनिकल गार्डन जाएंगे। यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री मॉरिशस के राष्ट्रपति धर्मवीर गोखुल से भी मुलाकात करेंगे। प्रधानमंत्री नवीन चंद्र राम गुलाम के साथ विचार विमर्श करेंगे और वरिष्ठ नेताओं से बातचीत करेंगे। विदेश सचिव ने कहा कि श्री मोदी भारतीय मूल के समुदाय के सदस्यों से भी मिलेंगे और सिविल सेवा कॉलेज और एरिया हेल्थ सेंटर जैसी दो परियोजनाओं का उद्घाटन भी करेंगे। इन दोनों संस्थानों का निर्माण भारत के अनुदान से हुआ है। इसके अलावा द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने के लिए कई समझौतों पर भी विचार विमर्श किया जाएगा।
The second part of budget session of Parliament will begin tomorrow. The second phase of the session, which will continue till the 4th of April, will have 20 sittings during the session. Discussion and voting on demands for grants for the year 25-26 and related appropriation bill will take place. Besides, several legislations, including the Banking Laws Amendment Bill, the Coastal Shipping Bill 2024, the Tribhuwan Sahakari University Bill, the Immigration and Foreigners Bill 2025, and the Railways Amendment Bill will be taken up for discussion and passage. The first part of the budget session of Parliament was held from 31st January to 13th February. President Draupadi Murmu had addressed both the Houses of Parliament, and Finance Minister Nirmala Sitharaman had presented the Union Budget during the first part of the session. The Lok Sabha had recorded 112% productivity during the first part. Finance Minister Nirmala Sitharaman has said that India is looking for a good trade agreement with the US to promote economic growth and ensure smooth supply chains. She also said that amid a growing global tariff war, India will have to move smartly to guard against possible dumping of goods from countries that are facing higher US tariffs. At the same time, India will protect the interests of domestic industries that rely on affordable imports, Ms. Sitharaman said. She was speaking at an award function in Mumbai yesterday. India and the US are negotiating a bilateral trade agreement with an aim to double trade to $500 billion per 2030. After a week-long visit, Commerce Minister Piyush Goyal returned from Washington yesterday after holding trade talks with his US counterparts. Finance Minister also said that GST rates will come down further and the work on rationalizing tax rates and slabs has almost reached a finale.
जी, और भारत ने हाल ही में हुए द्विपक्षीय व्यापार समझौतों के तहत ऑस्ट्रेलिया, संयुक्त अरब अमीरात, स्विट्जरलैंड और नॉर्वे जैसे विकसित देशों के लिए लागू अपने औसत शुल्क को काफी हद तक घटा दिया है। सूत्रों के अनुसार वर्तमान में यूरोपीय संघ और ब्रिटेन सहित अन्य भागीदार देशों के साथ भी इस तरह की बातचीत जारी है। अमरीका के साथ भी ऐसी ही चर्चा चल रही है। इस वर्ष फरवरी में भारत और अमरीका ने इस वर्ष के अंत तक पारस्परिक बहुक्षेत्रीय द्विपक्षीय व्यापार समझौते के पहले चरण पर बातचीत करने पर सहमति व्यक्त की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने वार्ता को आगे बढ़ाने के लिए वरिष्ठ प्रतिनिधियों को नामित करने पर सहमति व्यक्त की है। इसके बाद वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल के नेतृत्व में एक भारतीय प्रतिनिधिमंडल ने इस सप्ताह वाशिंगटन का दौरा किया और अमरीका के वाणिज्य सचिव और अमरीकी व्यापार प्रतिनिधियों से मुलाकात की।
The Ministry of Labour and Employment has urged platform workers to register themselves on the eShram portal for formal recognition and access to the benefits of the Ayushman Bharat Pradhan Mantri Jan Arogya Yojana, ABPMJAY. The ABPMJAY health scheme provides coverage of 5 lakh rupees per family per year for secondary and tertiary care hospitalisation across more than 31,000 public and private empanelled hospitals in the country. Recognising the contributions of gig and platform workers to the nation's economy, the Union Budget 2025-2026 includes provisions for the registration of online platform workers on the eShram portal, issuance of identity cards and healthcare coverage.
जी, और अब खबर चैंपियंस ट्रॉफी क्रिकेट की। चैंपियंस ट्रॉफी क्रिकेट के फाइनल में आज दुबई में भारत का मुकाबला न्यूजीलैंड से होगा। मैच भारतीय समय के अनुसार दोपहर 2:30 बजे से खेला जाएगा। तो सुभद्रा, आज दोपहर 2:30 बजे के बाद एक तरह से लॉकडाउन जैसी स्थिति दिखाई पड़ेगी, क्योंकि करोड़ों भारतीय टीवी से चिपके बैठे इस मैच का लुत्फ उठाएंगे और उम्मीद करेंगे कि भारत इसमें उसी तरह से जीत हासिल करे जैसे बाकी मैचों में इस ट्रॉफी में जीत हासिल की। इससे पहले सेमीफाइनल में भारत ने ऑस्ट्रेलिया को और न्यूजीलैंड ने दक्षिण अफ्रीका को हराया था। इस रोमांचक मुकाबले में भारत की मजबूत बल्लेबाजी का सामना न्यूजीलैंड के अनुभवी गेंदबाजी आक्रमण से होगा। भारत ने इस टूर्नामेंट में अब तक सभी मैच जीते हैं और ग्रुप मैच में न्यूजीलैंड को 44 रन से हराया था।
The second leg of the Khelo India Winter Games 2025 will begin at Gulmarg, Jammu and Kashmir today. Competitions will be held in skiing and snowboarding. The winners of first leg, Union Territory of Ladakh, will aim to defend their overall title. The second leg of the games, which were earlier scheduled to be held from 22nd to 25th of last month, had to be postponed due to lack of snow at Gulmarg, with Kashmir witnessing one of its driest winters in recent history. Earlier, the first leg of the games were held in late district of Ladakh in January this year, where athletes competed in ice skating and ice hockey events.
देश और दुनिया की तमाम बड़ी और प्रमुख खबरों के बाद अब आइए रुख करते हैं अपने महानगरों से जुड़ी खबरों का। तो सबसे पहले जानते हैं चेन्नई, हैदराबाद और बेंगलुरु से क्या खबरें हैं सुभद्रा के पास।
यस देवेंद्र, वी आर स्टार्टिंग द न्यूज विद फ्रॉम चेन्नई। अ टोटल ऑफ 133 ऑफिसर कैडेट्स एंड 24 वुमेन ऑफिसर कैडेट्स वर कमीशन्ड इनटू वेरियस यूनिट्स ऑफ द इंडियन आर्मी yesterday. Officers of 5 foreign nations completed their training, reinforcing international military ties. The reviewing officer, Lieutenant General Johnson P. Mather, Chief of Integrated Defence Staff, presented the prestigious Sword of Honour to Manya M. Kumar, the OTA Gold Medal to Pragati Thakur and the Bronze Medal to Surjit Yadav. In his address, he urged the young officers to serve the nation with honour, integrity and unwavering commitment to duty. Remarkable among the cadets was a wife who lost her husband, Sipoy Neeraj Singh Bhandari, in an accident. Daughter of retired Subedar Kundan Singh of the Brigade of Guards Battalion, Soni Bisht, had her world shattered on January 6, 2023, barely a month after her marriage to Neeraj of the 18th Kuan Regiment. Her father encouraged her to take this path. Among these newly commissioned officers was another cadet, Ved Vijay Nyog, from Jorhat, Assam, whose journey was no less remarkable. Ved had to withdraw due to family hardships and juggle jobs, making coffee by day and delivering food by night to survive. He later found work as travel photographer with major brands, but he cleared the combined defense services exam and secured his place at OTA. We have another news from Chennai. Nearly 10 hectares of the 2.7 square kilometer Gindi National Park one of the few located within the metropolitan area in the country are being restored as part of efforts to remove invasive species and revive grasslands crucial for the endangered black buck population. Park authorities have been clearing the areas and sowing native grass species to encourage the return of the black buck. Experts were consulted to identify suitable grass species for replantation. With more than 50 grass species native to GNP to choose from, officials selected 6 varieties to restore the cleared areas. The replanting is expected to be completed in 6 months, creating a favorable habitat for black buck to return. And getting to Hyderabad now. Telangana Chief Minister A. Revanth Reddy has announced that his government will empower women self-help groups to set up rice mills, godowns and other facilities as part of the initiative to make 1 crore women crorepatis. Speaking at a public meeting on the occasion of International Women's Day in Secunderabad last evening, he said the state government will help SHGs procure paddy, store it in godowns and mill it to supply rice to the state government and the Food Corporation of India. He also said the government's goal of a $1 trillion economy will be achieved only when SHGs thrive. The total number of SHG members in the state is expected to rise to 1 crore from the current 65 lakh. The government has relaxed norms, reducing the minimum age from SHG membership from 18 to 15 and increasing the upper age limit from 60 to 65. We have another news from Hyderabad. Earlier, the Chief Minister had laid the foundation stone for Chakli Ilamma University in Hyderabad, coinciding the International Women's Day. The Women's University infrastructure development is being carried out at a cost of 535 crore rupees. The Chief Minister directed the officials to complete the construction of academic blocks, an auditorium, sports grounds and other facilities within 30 months. Addressing students, he emphasized on women empowerment, giving examples from history about how so many strong women led the country and excelled in various fields. He mentioned Telangana's beloved Chakali Ellamma, who led a courageous fight against the feudal landlords during the state peasants' armed struggle. He asked girl students to take inspiration from Chief Secretary A.S.N. Santi Kumari, Education Principal Secretary Yogita Rana, Women and Child Welfare Minister Sitaka, and others. He expressed confidence in seeing 33% reservation for women being implemented in the Assembly and Parliament soon. Over to you now, Devendra, for rest of the news.
Ji. दिल्ली की खबरों की अगर शुरुआत करूं तो दिल्ली वालों के लिए अच्छी खबर है। दिल्ली में नवगठित भाजपा सरकार ने अपने चुनावी वादे को पूरा करते हुए निम्न आय वर्ग की महिलाओं को 2500 रुपए देने के लिए महिला समृद्धि योजना को मंजूरी दे दी है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कल एक संवाददाता सम्मेलन के दौरान ये घोषणा की। उन्होंने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर दिल्ली सरकार की मंत्रिमंडल की बैठक में इस योजना को मंजूरी दी गई। उन्होंने कहा कि इस योजना के क्रियान्वयन के लिए 5,100 करोड़ रुपए का बजटीय प्रावधान किया गया है। राष्ट्रीय पुस्तक न्यास एनबीटी ने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर कल महिला लेखकों के योगदान को दर्शाने के लिए महिलाएं दुनिया रचती हैं अभियान की शुरुआत की। यह अभियान दुनिया को प्रेरित करने और आकार देने की दिशा में महिला लेखकों की आवाज, लेखन और प्रभाव पर जोर देता है। अभियान का मुख्य फोकस शिक्षा मंत्रालय की पीएम युवा मेंटरशिप योजना के माध्यम से प्रकाशित युवा महिला लेखकों को बढ़ावा देना है। इस योजना के अंतर्गत 30 वर्ष से कम आयु की लेखिकाओं को वित्त पोषित करने के साथ साथ विभिन्न भारतीय भाषाओं और अंग्रेजी में 60 से अधिक महिला लेखकों को सलाह दी गई है और प्रकाशित किया गया है। ये अभियान जल्द ही शुरू होने वाले पीएम युवा 3.0 के पहले लाया गया है। और रुख करते हैं मुंबई का, तो वंदे भारत एक्सप्रेस और एक विशेष रेलगाड़ी के चालक दल में सभी महिला सदस्यों को शामिल कर मध्य रेलवे ने कल अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया। सीएसएमटी साईनगर शिरडी वंदे भारत एक्सप्रेस का प्रबंधन पूरी तरह से महिला रेल कर्मचारियों द्वारा किया गया। एक आयोजन में विशेष क्षण तब आया जब महिलाओं द्वारा प्रबंधित भारत के पहले रेलवे स्टेशन माटुंगा से ट्रेन गुजरी, जहां कर्मचारियों ने संकेतों का आदान प्रदान किया और महिला शक्ति की गूंज सुनाई दी। मध्य रेलवे ने कल्याण से ट्रॉम्बे तक एक विशेष मालगाड़ी चलाई जिसमें 1,150 टन माल ढोया गया, जो रेलवे क्षेत्र में महिलाओं के अधिक प्रतिनिधित्व की दिशा में एक महत्वपूर्ण प्रगति का प्रतीक है। कल्याण डोंबिवली नगर निगम किन्नर अस्मिता के सहयोग से कल किन्नर महोत्सव 2025 का आयोजन करेगा, जिसका उद्देश्य ट्रांसजेंडर समुदाय के सामाजिक और आर्थिक समावेश को बढ़ावा देना है। निगम आयुक्त डॉ इंदुरानी जाखड़ ने सामाजिक विकास विभाग के उपनगर आयुक्त संजय जाधव को ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के उत्थान के लिए समर्पित विभिन्न सरकारी योजनाओं को लागू करने का निर्देश दिया। कल्याण के आचार्य अत्रेय रंग मंदिर में आयोजित होने वाले इस कार्यक्रम में ट्रांसजेंडर कलाकारों द्वारा नृत्य, संगीत और स्टैंडअप कॉमेडी सहित कई सांस्कृतिक प्रदर्शन शामिल होंगे। और अब रुख करते हैं कोलकाता का, तो यहां भी दुनिया भर की तरह शनिवार को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया गया। कोलकाता में नारी शक्ति के प्रति सम्मान प्रकट करने के लिए महिला दिवस का आयोजन किया गया। विभिन्न सरकारी विभागों और संगठनों ने महिला सहकर्मियों को अग्रणी भूमिका प्रदान कर उनके योगदान को मान्यता दी और सम्मान दिया। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर क्षेत्रीय रेलवे, राज्य के पुलिस विभाग और अन्य संगठनों ने विशेष कार्यक्रमों का आयोजन किया। और अब अपने श्रोताओं को बताते हैं प्रमुख महानगरों के मौसम का हाल। सुभद्रा, राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में आज सुबह आसमान साफ है और मौसम शुष्क बना हुआ है। तापमान में थोड़ी वृद्धि हुई है, 15 डिग्री पहुंचा सुबह का। दिन में तापमान 32 डिग्री के आसपास रहने की संभावना है। और मुंबई में लू का येलो अलर्ट जारी किया गया है, जो कि मुंबई और आसपास के लोगों के लिए चिंता का विषय है। न्यूनतम तापमान 21 डिग्री रहा, लेकिन अधिकतम 37-38 डिग्री सेल्सियस तक रिकॉर्ड किया जा सकता है। और कोलकाता में आंशिक रूप से बादल छा सकते हैं, लेकिन बारिश की संभावना नहीं है। तापमान 20 और 31 डिग्री के बीच दर्ज किया जाएगा। चेन्नई, बेंगलुरु और हैदराबाद का मौसम आप बताइए।
चेन्नई इज एक्सपेक्टेड टू हैव अ फॉग और मिस्ट इन द मॉर्निंग एंड पार्टली क्लाउडी स्काई विल बी सीन लेटर ऑन। द मिनिमम टेम्परेचर वॉज 22 डिग्री सेल्सियस, मैक्सिमम विल बी अराउंड 35 डिग्रीज। बेंगलुरु इज एक्सपेक्टेड टू हैव पार्टली क्लाउडी स्काई, मिनिमम टेम्परेचर वॉज 19 डिग्री सेल्सियस, मैक्सिमम विल बी अराउंड 33 डिग्रीज। हैदराबाद इज एक्सपेक्टेड टू हैव पार्टली क्लाउडी स्काई विद हेज, द टेम्परेचर विल हावर बिटवीन अ मिनिमम ऑफ 19 डिग्रीज एंड अ मैक्सिमम ऑफ 36 डिग्री सेल्सियस।
जी, और मौसम के बाद इतिहास की बारी, तो आइए जान लेते हैं 9 मार्च के दिन इतिहास में क्या कुछ दर्ज हुआ है। आज 9 मार्च 2025 है। आज ही के दिन वर्ष 1945 में अमेरिकी एयरफोर्स ने टोक्यो में बम गिराए थे। बमबारी से लगी आग ने करीब 1/4 शहर को जलाकर राख कर दिया था और 80,000 लोगों की जान चली गई थी।
1961 this day, the Soviet Union launched the Kerbal Sputnik 4, also known as Sputnik 9, that carried a dog named Chernushka, some mice, frogs, and for the first time into space, a guinea pig. All were successfully recovered.
वर्ष 1973 में उत्तरी आयरलैंड में एक जन्म संग्रह हुआ था, जिसमें जनता ने ब्रिटेन के साथ रहने के पक्ष में वोट डाला था। लगभग 57% ऐसे मतदाता थे जिन्होंने ब्रिटेन के साथ रहने का समर्थन किया था, जबकि कैथोलिक ईसाइयों ने इस जन्म संग्रह का बहिष्कार किया था। वर्ष 1986 में सैटेलाइट आधारित पहला टेलीफोन संपर्क नेटवर्क औपचारिक रूप से शुरू हुआ था।
1990 this day, Dr. Antonia Novello was sworn in as the first lady and the first Hispanic Surgeon General of the United States, marking a significant milestone in medical and social history. And also 1993 this day, Sting releases his fourth solo album, Ten Sumner's Tales, which contains the hit Fields of Gold.
जी, और 1999 में ब्रिटेन में भारतीय मूल के दिग्गज उद्योगपति स्वराज पॉल को सेंट्रल बर्मिंघम यूनिवर्सिटी ने डॉक्टरेट की मानद उपाधि प्रदान की थी।
एंड 2018 दिस डे, आफ्टर 66 इयर्स, द ब्रिटिश म्यूजिक मैगजीन NME पब्लिशेस इट्स लास्ट प्रिंट एडिशन।
और अब याद करते हैं, स्मरण करते हैं उन महान लोगों को जिनका जन्मदिन, जयंती या पुण्यतिथि है। इस क्रम में सबसे पहले स्मरण आधुनिक हिंदी साहित्य की आलोचना विधा को समृद्ध करने वाले डॉक्टर नागेंद्र का, जिनकी आज जयंती है। वे काव्य शास्त्र के प्रकांड विद्वान थे। उनके निबंधों में एक सहृदय तथा भावुक निबंधकार के गुण लक्षित होते हैं। उनकी प्रतिभा का विकास मूलतः आलोचनात्मक निबंधकार के रूप में हुआ। डॉक्टर नागेंद्र के निबंधों की भाषा शुद्ध, परिष्कृत, परिमार्जित, व्याकरण सम्मत और साहित्यिक खड़ी बोली है। गद्य भाषा की प्रमुख विशेषता यह है कि ये विषयानुरूप अपना स्वरूप बदलती चलती है। निबंधों में सर्वत्र भाषा का रूप साफ सुथरा, शिष्ट, मधुर एवं समर्थ लक्षित होता है। भारत भूषण अग्रवाल ने नए शब्दों के निर्माण की दृष्टि से डॉक्टर नागेंद्र का अवदान सर्वोपरि माना है। उनके निबंधों में विचार गांभीर्य, चिंतन की मौलिकता तथा शैली की रोचकता का सहज समन्वय दिखाई पड़ता है। उन्हें उनकी रचना रस सिद्धांत के लिए वर्ष 1965 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। और हम स्मरण कर रहे हैं प्रसिद्ध बाल साहित्यकार हरिकृष्ण देवसरे को भी। मध्य प्रदेश के नागौद में 9 मार्च 1938 को उनका जन्म हुआ था। बच्चों के लिए की गई उनकी साहित्यिक रचनाओं को खूब पसंद किया गया। उन्हें 2011 में साहित्य अकादमी बाल साहित्य लाइफटाइम पुरस्कार से सम्मानित भी किया गया। 300 से ज्यादा पुस्तकें लिख चुके देवसरे को बाल साहित्यकार सम्मान, उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान के बाल साहित्य सम्मान, कीर्ति सम्मान और हिंदी अकादमी के साहित्यकार सम्मान सहित विभिन्न पुरस्कारों और सम्मानों से नवाजा गया। माना जाता है कि देवसरे भारतीय बाल साहित्य में डॉक्टरेट की उपाधि हासिल करने वाले पहले व्यक्ति थे। वे बच्चों के बीच काफी लोकप्रिय पत्रिका पराग के करीब 10 साल तक संपादक रहे। देवसरे को पहला वात्सल्य पुरस्कार दिया गया था। उन्होंने भारतीय भाषाओं में रचित बाल साहित्य में रचनात्मकता पर बल दिया और बच्चों के लिए मौजूद विज्ञान कथाओं और एकांकी के खालीपन को भरने की कोशिश की। अगर उनकी और कुछ मुख्य रचनाओं की बात करें तो खेल बच्चों का, आओ चंदा के देश चलें, मंगल ग्रह में राजू, उड़ती तस्तरियां और स्वान यात्रा तथा लावेनी शामिल हैं।
एंड देवेंद्र, लेट्स टॉक अबाउट द फर्स्ट लेडी ऑफ इंडियन सिनेमा, दैट्स देविका रानी आई एम टॉकिंग अबाउट, एंड शी पास्ड अवे दिस डे इन 1994 एट द एज ऑफ 85। ऑफ कोर्स शी वाज रिगार्डेड एज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट एक्ट्रेसेस एंड वन ऑफ द हाईएस्ट पेड एक्ट्रेसेस ऑफ द 1930s एंड अर्ली 40s आल्सो। शी आल्सो सैंग अ सॉन्ग इन द फिल्म, अ बायलिंगुअल सॉन्ग इन इंग्लिश एंड हिंदी, एंड हियर्स अ फेमस सॉन्ग फ्रॉम अ फिल्म अछूत कन्या, संग बाय हरसेल्फ।
पंछी बन के संग संग डोलू रे,
मैं बन के चिड़िया बन के बन बन बोलू रे।
बर्थ एनिवर्सरी ऑफ उस्ताद जाकिर हुसैन, tabla virtuoso, composer, music producer. He was the eldest son of legendary tabla player Ustad Allah Rakha. Renowned for his mastery of the tabla, Zakir Hussain was a celebrated musician and composer who had achieved international acclaim, winning multiple Grammy Awards. His contributions to Hindustani classical music, fusion style and global collaborations have cemented his legacy as one of the most influential artists worldwide. He was awarded the Padma Shri in 1988, Padma Bhushan in 2002 by the Government of India. And he was also awarded the Sangeet Natak Academy Award in 1990. And in 1999, he was awarded the United States National Endowment for the Arts National Heritage Fellowship, the highest award given to traditional artists and musicians. Of course, he was born this day in 1951 in Mumbai.
भारत के प्रसिद्ध साहित्यकार, कवि, लेखक, व्यंग्यकार और पत्रकार हरिशंकर शर्मा की भी आज पुण्यतिथि है। उर्दू, फारसी, गुजराती, मराठी आदि भाषाओं के ज्ञान ने पंडित हरिशंकर शर्मा की साहित्यिक क्षमता को समृद्ध किया। वो हिंदी के चुनिंदा हास्य लेखकों में से एक थे। उन्होंने कई पत्र पत्रिकाओं का सफल संपादन किया। अपनी रचनाओं के माध्यम से हरिशंकर शर्मा समाज में फैली रूढ़ियों, कुरीतियों तथा अन्य बुराइयों पर करारी चोट करते थे। पंडित हरिशंकर शर्मा का जन्म 19 अगस्त 1891 को उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में हुआ था। उनकी प्रमुख रचनाओं में शामिल हैं रत्नाकर, अभिनव हिंदी कोश, हिंदुस्तानी कोश, पिंजरा पोल, रामराज्य और कृष्ण संदेश। उन्हें पद्मश्री सहित विभिन्न सम्मानों से सम्मानित किया गया।
All American pop rock bands Boston's lead singer Brad Dell passed away this day in 2007 when he was just 55. The cause, of course, was suicide. Boston burst onto the music scene in 1976 with a meticulously crafted single, More Than a Feeling, which combined elements of progressive rock and 1960s pop snatch of that melody. We are listening to that right now. song for Boston's lead singer Brad Delp. And friends, Yuri Gagarin was a Soviet cosmonaut who in 1961 became the first man to travel into space. He was born this day in 1934. His space flight brought him immediate worldwide fame. He was awarded the Order of Lenin and given the titles of Hero of the Soviet Union and Pilot Cosmonaut of the Soviet Union. Monuments were raised to him. Streets were renamed in his honor across the Soviet Union. Gagarin never went into space, but took an active part in training other cosmonauts. He made several tours to other nations following his historic flight, and from 1962 he served as a deputy to the Supreme Soviet.
Ji, suprasiddh film nirdeshak, nirmata aur patkatha lekhak K. Asif ko bhi hum aaj yaad kar rahe hain. 1960 mein bani फिल्म मुगले आजम के लिए उन्हें विशेष रूप से ख्याति मिली. उत्तर प्रदेश के इटावा में पैदा हुए के आसिफ महज आठवीं जमात तक पढ़े थे. पैदाइश से जवानी तक का वक्त गरीबी में गुजरा, लेकिन किस्मत के सितारों और कला की प्रतिभा ने उन्हें हिंदी सिनेमा में उस जगह पहुंचा दिया जो शिखर है. उन्होंने भारतीय सिनेमा के इतिहास की सबसे बड़ी भव्य और सफल फिल्म का निर्माण किया. ये इसलिए मुमकिन हुआ क्योंकि उन्हें सिर्फ इतना पता था कि उनकी फिल्म के लिए क्या अच्छा है और क्या बुरा. उनका पूरा नाम करीमुद्दीन आसिफ था. उनका जन्म 14 जून 1922 को हुआ था और 9 मार्च 1971 को इस दुनिया को अलविदा वो कह गए. लेकिन अपने कई कामों के चलते और खासतौर पर जिस फिल्म का जिक्र मैंने किया मुगले आजम, उसके चलते वो सिनेमा जगत में अमर हो गए. आइए सुनते हैं इसी फिल्म का ये गाना. And friends, birth anniversary of Lloyd Price, American singer-songwriter entrepreneur. Price made his mark in rock music history with his exuberant tenor and his flair mixing R&B with pop. He was called Mr. Personality after his song of the same name because that became a smash. Price's recording of his composition Lordy Miss Claudy with Fats Domino topped the rhythm and blues charts in 1952 and was later a hit for Elvis Presley. A snatch of it right now. Let's listen to it. हिंदी फिल्मों के आकर्षक अभिनेताओं में शुमार जॉय मुखर्जी को भी हम याद कर रहे हैं, जिन्होंने आज ही के दिन वर्ष 2012 में इस दुनिया से रुखसत ली. वे उन अभिनेताओं में शुमार थे जिन्होंने सिने प्रेमियों के दिलों पर लंबे समय तक राज किया. उन्होंने एक मुसाफिर एक हसीना, फिर वही दिल लाया हूं, लव इन टोक्यो, शागिर्द, एक कली मुस्काई, साज और आवाज जैसी कई यादगार फिल्में दी और उनकी फिल्मों के कई गाने हिट रहे. एक गाना आपको सुनवाते हैं.
लखों है निगाह में जिंदगी की राह में सनम हसीन जवान होंठों में गुलाब है आंखों में शराब है लेकिन वो बात कहाँ हो. लखों है निगाह में जिंदगी की राह में सनम हसीन जवान.
Birthday of Mohammad Shami, Indian international cricketer who plays as a right-arm fast bowler, Indian national cricket team and for the Bengal in domestic cricket and for the Sunrisers Hyderabad in the Indian Premier League. He also plays for Mohun Bagan in domestic competitions of West Bengal.
Ji, Hindi film jagat mein calendar ke naam se mashhoor abhineta Satish Kaushik ko bhi hum yaad kar rahe hain aaj, jinhone aaj ke din is duniya ko alvida kaha tha. Wo nirmata, nirdeshak, comedian aur patkatha lekhak bhi the. Haryana ke Mahendragarh jile mein janme Satish Kaushik ne अपनी कला से, अपने अभिनय से तमाम लोगों को हंसाया, गुदगुदाया और कैलेंडर के नाम से जब फेमस हुए तो आइए वो गाना भी सुन लेते हैं.
मेरा नाम है कैलेंडर, मैं तो चला किचन के अंदर, बाल मांगो भैया हाथ जरा जोर के, बाल मांगो भैया हाथ.
फिल्म रामलखन और साजन चले ससुराल के लिए 2 बार बेस्ट कॉमेडियन के फिल्म फेयर अवार्ड से सम्मानित किया जा चुका है. और श्रोताओं, अब घड़ी की सुइयां हमें कह रही हैं कि हम आपसे आज का ये कार्यक्रम न्यूज मैगजीन आज सवेरे समाप्त करने के लिए लें अनुमति, लेकिन आप लगातार बने रहिए आकाशवाणी के साथ।
थैंक्स फॉर ट्यूनिंग इन फ्रेंड्स, हैव अ ग्रेट डे।
नमस्कार।